भारत में नोटबंदी के बाद लोगों के सामने आती मुश्किलों को लेकर दुनिया के अनेक समाचार पत्रों ने लेख छापे हैं और इन लेखों के अनुसार मोदी ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए नोटबंदी की थी, लेकिन अब नए नोटों से ही भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। वैसे भारत में नोटबंदी नई पहल तो नहीं है, 1978 में भी सरकार ऐसे कदम उठा चुकी है। और उधर भारत में अब कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पुरानी पड़ चुकी टैक्स प्रणाली को पहले अपडेट करना चाहिए था। कुछ का कहना यह है कि काम तो अच्छा था लेकिन उसको लागू करने के तरीके सही नहीं थे। तो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर आए यहाँ पर जनसत्ता के रिपोर्टर अशोक बंसल से मुलाकात हुई और उनका कहना है,
नोटबंदी का जो फैसला लिया गया है ये बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला था और काला धन और आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कुछ फैसले लेने चाहिए और इस फैसले का लोगों ने स्वागत किया। लेकिन इस फैसले के जो परिणाम धीरे धीरे जो देखने में आए वो बहुत ही चौंकाने वाले थे, लोगों को तकलीफ देने वाले थे। मसलन बैंकों पर एकदम पैसे की आमद कम हो गई, पैसा देना बंद कर दिया, ATM थे वहाँ के वो सब खाली हो गए और उस लाइनों में एक एक दिन दो दो दिन लोग खड़े हुए हैं। ये सारी जो दिक्कतें आईं उसको लेकर लोगों ने ये कहा कि ये फैसला बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया फैसला था और बिना किसी तैयारी के लिया गया था। तो विरोधी दल के जो लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को एक मुद्दा बना लिया है और आज की तारीख में भी ये परेशानियां अभी भी बनी हुई हैं, बेशक थोड़ी कम हुई हैं।
तो प्रश्न ये आता ही है कि इन समस्याओं के बारे में क्या पहले से नहीं सोचा गया, किसी से विचार विमर्श नहीं किया गया और इसको इतना गुप्त रखना था?
सीक्रेट होना चाहिए था लेकिन वो इतना सीक्रेट रखा गया कि किसी भी अर्थशास्त्री से या किसी जो जानकार लोग हैं जो दूर की सोच सकें कि इस नोटबंदी के बाद दुष्परिणाम क्या होंगे, ऐसा लगता है कि सरकार ने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया, देखा नहीं और आज सरकार खुद ये महसूस करती है कि ये जो स्थिति है हमारे देश की इस समय जो करीब 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं वो ठीक नहीं है और आने वाले वक्त में ये कब नॉर्मल होगी इसकी भी अभी कोई हम लोग निश्चित रूप से नहीं कह सकते।
वैसे एक बात और महसूस की गई कि नोटबंदी के बाद घरेलू हवाई यात्राओं और विदेशों की यात्राओं की भी वृद्धि हुई और इसी के चलते मुलाकात हुई भारत से आए कुछ पर्यटकों से और मुलाकात हुई गुड़गांव के डॉक्टर पवन चौधरी से। उन्होंने भी कहा कि व्यक्तिगत तौर पर इस नोटबंदी से उनको कुछ परेशानी का सामना तो करना ही पड़ा।
मेरी व्यक्तिगत तौर पे राय ये है कि जिस तरीके से हमारा भारत एक उत्थान की तरफ या एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहा है तो उसके अंदर आधुनिकीकरण की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। आधुनिकीकरण की मशीनरी एक हमेशा से एक धीरे धीरे ट्रैक पे ही तैयार होके आती है, कभी भी पूरी की पूरी थाली एक साथ नहीं परोसी जा सकती। काम थोड़ा जल्दबाजी में हुआ, लोगों को फैसला लेने में थोड़ा समय लगा तो परेशानी बहुत है लेकिन धीरे धीरे करके हर आदमी को शायद आदत पड़ जाएगी और धीरे धीरे हम सब लोग संभल जाएंगे।
और उनकी पत्नी डॉक्टर शालिनी चौधरी का कहना था,
काफी प्रभावित हुए हम, काफी हद तक ठीक भी है बट क्योंकि करप्शन काफी हद तक करप्शन ने कैप्चर किया हुआ है भारत को तो इसलिए मुझे लगता है कि ये काफी समय लेगा संभलने के लिए। एक्शन बुरा नहीं है बट शायद एग्जीक्यूशन जो थोड़ी सी समस्याएं हैं कि आम इंसान जो है, आम आदमी जो है वो अपना ही पैसा जमा करा के और इतनी इजीली नहीं निकाल पा रहा है, लिमिट जो है वो बहुत कम है।
इस नोटबंदी से छोटे व्यापारियों को कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ा। अशोक बंसल ने ध्यान दिलाया लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों की तरफ।
छोटे जो कुटीर उद्योग थे जो शहर दर शहर में हुआ करते थे वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, काम मजदूर लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं, अराजकता का माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है।
और दिल्ली से आई रीनू मल्होत्रा जो अपना स्वयं का काम करती हैं और जो फैशन डिजाइनर हैं, उनके व्यवसाय पर इसका क्या असर पड़ा और मोटे तौर पर वो नोटबंदी को लेकर क्या सोचती हैं, उन्होंने बताया।
भारत जो देश है ज्यादातर फैशन पर ही चलता है, कैश में थोड़ा सा कम हो गया है कि अब लोग कार्ड से देना पसंद करते हैं या फिर बैंक ट्रांसफर करना पसंद करते हैं, बट इतना फर्क नहीं पड़ा है उसमें। ये वैसे तो बहुत अच्छा फैसला है, इससे भारत में बहुत सुधार आएगा। जो करप्शन है, जो काला धन लोग जमा करके रखते हैं अपने घरों में, वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उन्हें नोट निकाल ही नहीं पाएंगे तो रखेंगे कहाँ से। और दूसरी बात ये है कि लिमिटेड लोगों के पास ही जो पैसा इकट्ठा होके रहता था, अब वो बैंकों को मिल जाएगा। बैंकों को मिल जाएगा तो थोड़ा जो इकॉनमी है हमारी उसमें सुधार आएगा, बैंक्स ज्यादा लोन दे पाएंगे, ज्यादा लोगों के काम कर पाएंगे।
और दिल्ली से ही आए सुनीत मल्होत्रा ने ध्यान दिलाया एक बड़ी परेशानी पर कि डिजिटल स्वप्न तो सुंदर है, लेकिन उसको लागू करने में कमियां आ रही हैं, खासतौर पर दूर दराज क्षेत्रों में और गांवों में। उनका कहना है कि साधनों की कमी मुख्य तौर पर उन तक पहुंचने और उनको इस प्रणाली के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा का अभाव है।
जो गांवों में किसान है, जो मंडी में जाता है, उन लोगों को सिखाने के लिए कोई फौज तैयार नहीं हुई हुई। सीखना चाहते हैं, उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज है उनको अपने काम की, और जो उनके सवालात हैं बड़े जायज़ हैं, और जो परेशानियां उनके साथ अभी हो रही हैं उनको देखते हुए बड़े मतलब रेगुलर या राइट सवाल वो पूछ रहे हैं, बट उनको जवाब देने के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर या कोई ऐसी चीज़ तैयार की गई हो पहले से, वो नहीं है। तो उनकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। हम लोग जो शहर में हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं या आप करेंगे, या ई पेमेंट सिस्टम्स जो अब आ गए हैं या आ रहे हैं, हम लोग तो कर लेंगे, बट मेन समस्या उनके साथ है। और उनको तैयार करने के लिए आई थिंक गवर्नमेंट को एक फौज तैयार करके रखनी चाहिए।
तो अभी तक मोदी जी के इस फैसले का मोटे तौर पर आम जनता ने स्वागत ही किया है, स्थिति को, परेशानियों को, समस्याओं को समझा भी है, लेकिन इस फैसले की सही मायनों में पहचान होगी अब राज्यों में आने वाले चुनावों के परिणामों से। और इसी तरफ ध्यान दिलाया जनसत्ता के रिपोर्टर अशोक बंसल जी ने।
कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, तभी ये हम लोग कह सकते हैं कि जो लोग हैं, जनसंख्या है, वो वास्तव में क्या सोच रही है। अभी हम लोग ये नहीं कह पा रहे हैं ठीक लिया या गलत लिया, लेकिन 5 राज्यों के जब चुनाव होंगे और वहाँ के जो नतीजे आएंगे, उससे ये तय होगा कि ये फैसला कैसा था।
यूं ये भी कहा जा रहा है कि विरोध सिर्फ राजनीतिक ही है, आम जनता इससे परे ही रहेगी, और आम जनता स्थिति को समझती है और आशावान भी है।
इतनी बुरी नहीं है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्होंने ज्यादा कर रखा है, वरना अगर आप आम इंसान से पूछें तो इतनी दिक्कतें नहीं है।